इंसान पढ़ा लिखा मुसलमान होते हुए आपकी और मेरे पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दुनिया में कौन सी थ्योरीज प्रमोट हो रही हैं और उन थ्योरीज को किस तरह से रिफ्यूट किया जा सकता है, या एटलीस्ट उनके लिए डायलॉग किए जा सकते हैं। दिस इज अ हाई टाइम कि पढ़ी लिखी औरत इस चीज का इल्म हासिल करे। नहीं इल्म हासिल करेंगे तो अगली नस्ल तो हाथों से निकली निकली, अगर ये वाली नहीं भी निकली तो, अगर इसी डायरेक्शन में जाती रही उम्मत, सो फिर इससे अगली नस्ल और उससे अगली नस्ल और उससे अगली नस्ल कलमा गो होगी या नहीं होगी, नो वन नोस, नो वन नोस। लूत अलैहि सलाम अपने माशरे में आते और कहते अपने वालिदैन का एहतराम करो और कहते अपने हमसाये का ख्याल रखो। कोई लूत अलैहि सलाम को बुरा कहता? कोई नहीं बुरा कहता, सब कहते हाँ ठीक है। लूत अलैहि सलाम ने पिन पॉइंट किया उस गुनाह के ऊपर जो माशरे को दीमक की तरह खा रहा था। लूत अलैहि सलाम ने उस गुनाह पर हाथ रख के उसको इलेबोरेट किया, किसी के डर से नहीं, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में और उस जिम्मेदारी की वजह से जिसका मिशन उनको दिया गया था। वरना दावत तो तबलीग तो ये भी होती है जो हमारी मस्जिदों के मेंबर से ज्यादातर होती है। जुमे के खुतबों में कौन बताता है कि होमोसेक्सुअलिटी से कैसे फाइट करेंगे? बताता है कोई? मुझे नहीं पता कोई बताता है या नहीं बताता। ये तक तो बताते नहीं है कि जब आप बाहर से आते हैं तो बाहर के माशरे में और दुनिया में कारोबार में अमानत में खयानत मत कीजिए, रिश्वत मत दीजिए। वहां ये बताते हैं कि 15 शाबान जिस जिस फिरके की मस्जिद होती है वो अपने फिरके को प्रमोट करने की कोशिश में लगी रहती है। पूरा खुतबा इसी पर हो जाता है 30 मिनट का कि 15 शाबान की रात की इबादत की ऑथेंटिसिटी तो है, जो कहते हैं नहीं है वो तो अहमक है और जाहिल है। ये खुतबों की जरूरत है आज हमें, या इस खुतबे की जरूरत है कि झूठ कैसे खत्म करना है, मुसलमान को मुसलमान कैसे बना के रखना है, ईमान पर कायम कैसे रहना है इस फितने के दौर के अंदर, कारोबार को इस्लाम के मुताबिक कैसे करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इस्लाम के मुताबिक कैसे करना है। कहां से आएंगे मस्जिदों के ऊपर ऐसे खतीब जो इस तरह के इश्यूज को डिस्कस करेंगे? आपकी और मेरी गोद से इंशाल्लाह यहीं से निकलेंगे, और ये आपका कन्विक्शन फिल्टर डाउन होगा आपकी औलाद में, अगर आपकी औलाद में नहीं तो इंशाल्लाह आपकी औलाद की औलाद में जरूर होगा। अल्लाह से मदद मांगे। सो ईमान रखें कि जितना हम कुरान को समझने के लिए बाहर की दुनिया को भी साथ साथ एक्सप्लोर करते रहेंगे, उतना आपकी और मेरे लिए विजन की क्लैरिटी आती रहेगी। अल्लाह ने दो मुकम्मल जेंडर्स में इंसानियत को डिवाइड किया है, मर्द और औरत। बायोलॉजिकली आप यूनिसेक्स नहीं होते हैं, बायोलॉजिकली एक कैटेगरी अलग है जो होती है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कमी होती है, वो एक अलग कैटेगरी है, उसको इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली अल्लाह ताला ने हर इंसान को आम तौर पर या तो मर्द बनाया या औरत बनाया। ये नहीं है कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फर्क नहीं पड़ता कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मर्द के हैं और दिमाग औरत का है। अल्लाह ने ऐसी चीज नहीं बनाई कोई। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंटल इशू। अल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं बनाता। मेक योर पॉइंट क्लियर, बिल्कुल अपनी जहनीत को साफ कर लीजिए। अल्लाह ने बायोलॉजिकली या तो मर्द बनाए हैं या बायोलॉजिकली औरतें बनाई हैं, मगर जब हमने इस सब को मिक्स कर दिया, दुनिया ने मिक्स किया, ऑब्वियसली हम दुनिया के पीछे चलने वाले हैं, और ये दुनिया का उसूल रहा है। दुनिया हमेशा अक्सरियत को अथॉरिटी समझती रही है, जो काम सब करते हैं वो ठीक लगता है। जब भी तो हमारे माशरे में से बिदात खत्म नहीं हो रही, इसलिए कि सब कर रहे हैं। सो जो एक बेचारा खड़ा होता है उसको खींच खींच के सब बिठा देते हैं, या जो एक बेचारा खड़ा होता है वो भी इतनी मेजोरिटी के करने की वजह से प्रेशराइज हो जाता है, हाँ शायद मैं गलती हूं, हाँ शायद मैं एक्सट्रीमिस्ट हो रही हूं। अक्सरियत को मेजोरिटी ऑफ द टाइम इंसानियत ठीक समझती है। सो अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया कि दो अलग अलग कंप्लीट जेंडर हैं। लेकिन जब इंसानियत ने नारा लगाया कि हम सब बराबर हैं, मर्द हो या औरत हो, तो ये कॉन्सेप्ट आगे आगे सेक्सुअली भी प्रमोट होता रहा। जब मर्द और औरत को बराबर कर दिया, बायोलॉजिकल सेक्स गायब कर दी, सो फिर ये कह दिया कि मर्द का मर्द से ताल्लुक इट्स ओके, औरत का औरत से ताल्लुक इट्स पॉसिबल। यही कमजोरी आपको कौमे लूत के अंदर नजर आती थी। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है अकल और ख्वाहिश के साथ, عقل بھی دی ہے اور خواہشات بھی دی ہیں. اب جو امتحان ہے وہ عقل اور خواہش کو کنٹرول کرنے کا ہے, کہ اپنی عقل اور اپنی خواہش کو کنٹرول رکھو. آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا اور جنت میں رکھ دیا, اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اپنی خواہش کو کنٹرول کر کے رکھنا. جہاں آدم علیہ السلام اپنی خواہش کے دائرے سے باہر آئے, پوری جنت میں انجوائمنٹ کی اجازت تھی. بس کہا تھا کہ ایک خواہش سے اپنے آپ کو روکنا, ایک طرف ایک درخت کا رخ نہ کرنا, باقی ساری جنت میں گھومو پھرو. خواہش کے امتحان میں شیطان کی باتوں میں آ کے ٹریپ ہو گئے تھے نا. سو خواہش کا امتحان ہر انسان کا ہے, عقل کا امتحان ہر انسان کا ہے. ایموشنز کے ساتھ ہم پیدا کیے گئے ہیں, ایموشنز پمپ کرتے ہیں خواہشات کو. سو روکا جاتا ہے جذبات کو, تھام کے رکھا جاتا ہے جذبات کو, ورنہ نفس تو نفس امارہ ہے. نفس امارہ جو آپ کو کانسٹینٹلی سو کا, برائی کا حکم دیتا ہے. قابیل کس کا بیٹا تھا؟ قابیل کس کا بیٹا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. قابیل اپنے حسد کے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکا تو کیا ہوا؟ قتل کر دیا. غلطی ہو گئی نا. سارا امتحان عقل اور خواہش کا ہی ہوتا ہے. قوم لوط کے اندر, مردوں کے اندر جنسی جذبات جو تھے, انہوں نے اس کو عورتوں سے پورا کرنے کی بجائے مردوں سے پورا کیا. سو جذبات کے امتحان سے یہ بھی آزمائے گئے. جب جذبات کو نہیں کنٹرول کیا, جب جذبات اور خواہش کو قابو نہیں کیا, تو انہوں نے اپنی سیکشوئل گریٹیفیکیشن مردوں کے ساتھ کی, ناکام ہو گئے, ٹھوکر کھائی, اللہ کی نافرمانی کی. یہ جو عقل اور خواہش تھی, اسی نے انسان کو دین سے دور کیا, اسی نے انسان کو مورالٹی اور ریلیجن کو الگ الگ کروایا, کہ دیکھو اخلاق الگ چیز ہوتی ہے اور دین الگ چیز ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے سائنس کو موقع ملا یہ کہنے کا کہ مرد اور عورت برابر ہیں. آپ کو پتا ہے یہ بات شروع ہوئی تھی سائنٹیفک فیکٹ سے, کہ مرد اور عورت برابر ہیں, جو کہ بعد میں حصہ بنی ہے اس پوری سمجھ لیجئے ریولوشن کا, جس نے ایک معاشرے میں سٹینڈنگ قائم کر لی کہ عورت اور مرد برابر ہیں, جینڈر ایکوالٹی کی. اصل میں سائنس سے شروع ہوئی تھی. جب کہا کہ مرد اور عورت برابر ہیں, تو پھر کہہ دیا کہ ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی سے بھی تعلق قائم کر لو, جس سے دل کرے اس سے تعلق قائم کرو. ایٹ لیسٹ ہومو سیکشوئلز آج بھی جو ججمنٹ یا جو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہومو سیکشوئل ہیں, ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں, مگر ہم اچھے انسان بھی ہیں, ہم کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے, ہم کسی کو ہرٹ نہیں کرتے, ہم کسی انسان کو جو ہے وہ اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں. وی آر جسٹ اے گڈ ہیومن بینگس. یہ جسٹیفیکیشن تو دنیا دیتی رہی ہے, اور جہاں جہاں دنیا نے, آپ کو ایسے بہت سے مسلمان مل جاتے ہیں جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے, پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے, بٹ کہیں گے دیکھیں اللہ نے کہا ہے کسی انسان کا دل نہ دکھاؤ. آپ کو نظر آئے گا یہ سیپریشن, پارٹ آف موریلٹی اور پارٹ آف ریلیجن بالکل الگ الگ. جنہوں نے اخلاقیات تھاما انہوں نے دین چھوڑا, اور جنہوں نے دین تھاما انہوں نے اخلاقیات چھوڑ دیا. سو آپ کا اور میرا امتحان آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے. اخلاق بھی تھامنا ہے اور دین بھی تھامنا ہے, اور بیلنس وے میں تھامنا ہے, تاکہ اس کو بہترین طریقے سے دنیا کے سامنے بھی لا سکیں, اور اللہ کے سامنے بھی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے بھی اپنی حجت تمام کر سکیں. سو سائنس کا یہ کہنا تھا کہ انسان کی زندگی میں, انسانوں کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک جیسا بنایا. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ سیکشوالٹی از پارٹ آف واٹ میکس اس ہیومن. یہ جو ہماری زندگی کا سیکشوئل ایسپیکٹ ہوتا ہے, یہ ہمارے انسان ہونے میں بڑا رول پلے کرتا ہے, یہ سائیکالوجی کہتی ہے. یعنی اس کا, آپ اور میں جب سیکشوئل ریلیشن شپ کی بات سنتے ہیں, تو سب سے پہلے اس کا کیا مقصد ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ सेक्सुअल रिलेशनशिप का दुनिया, ये सुकून वाला तो कुरान का एंगल है ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप का शुरू से हमेशा से दुनिया ने क्या मेन मकसद समझा? प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पीशी, सिंपल। दुनिया ने हमेशा इसका जो मेन मकसद समझा वो यही समझा कि जिसको आप कहती हैं बकाए इंसानियत, नस्ले बका, नस्ल को आगे से आगे बढ़ाना, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशी। सेक्सुअल रिलेशनशिप का बेसिक मकसद इंसानों ने यही समझा। कुरान ने इससे बढ़कर बताया, ये इस्लाम था, ये कुरान था कि जिसमें भी आपने कहा किसी ने कि अल्लाह ने सेक्सुअल रिलेशनशिप को सुकून के लिए रखा है, ये तो कुरान का एंगल था। स्पाउस रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत बड़ा एंगल, आप सारी जिंदगी बच्चा नहीं पैदा कर रहे होते, या आप कर भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, मगर क्या ये सुकून का फैक्टर ये इंसान को जिंदगी में मिलता रहता है? ये कंटिन्यू करता है इंसान के साथ। ये अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के इस रिश्ते के अंदर ये खासियत रखी है। इसलिए कहा जाता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप का मकसद प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशी से बढ़कर है। और अब साइकोलॉजी ये कह रही है, कुरान तो ये 1450 साल पहले कह चुका। अल्लाह ने इंसान को एक ऐसी मखलूक बनाया है, मैंने आपको बताया था कि जिसमें सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा है, बड़ी स्ट्रांग है, और इसका इम्पैक्ट इंसान के ऊपर बहुत स्ट्रांग आता है, पता नहीं चलता इंसान को लेकिन आता बहुत है। ये जो अल्लाह ने इंसान एक मखलूक बनाई है, इसमें अल्लाह ने मर्द और औरत के स्पेसिफिक अलग अलग रोल एलोकेशन दिए या नहीं दिए, या ये कहा है कि जो काम मर्दों के हैं वो औरतें भी कर सकती हैं, जो औरतों के हैं वो मर्द भी कर सकते हैं? क्या इस्लाम स्फीयर्स अलग अलग करता है, या इस्लाम कहता है बस ये काम है, चाहे तो मर्द कर लें चाहे तो औरतें कर लें? क्या मर्द बच्चा पैदा कर सकते हैं? करके तो दिखाएं, चीखे ना निकल जाए तो देखना, इट्स अ फैक्ट। औरत में इतनी बर्दाश्त रखी है अल्लाह ने, आपकी चीखें निकलती हैं, बट आप उस वो 8th, 7th मंथ से लेकर 9th मंथ तक जो मां की हालत होती है उसके अंदर भी 99% औरतें सिर्फ बेड रेस्ट नहीं कर रही होती हैं कि अब जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी मैं तो दुनिया का कोई काम नहीं कर सकती हूं। ऑब्वियसली आप एक दफा थोड़ी मां बनते हैं, सो अगर आपका दूसरा या तीसरा या चौथा बच्चा होता है तो उससे पहले बच्चे भी होते हैं, उनको भी देखना होता है। अल्लाह ताला ने स्फीयर्स अलग अलग रखे हैं। इसी होमोसेक्सुअलिटी के टॉपिक के अंदर जेंडर इक्वालिटी भी डील हो जाती है बड़े आराम से। आप आराम से अपनी जहनियत और अपनी औलाद की जहनियत को ठीक कर सकते हैं। रोल एलोकेशंस बिल्कुल अलग अलग हैं, स्फीयर्स बिल्कुल अलग अलग हैं, इस्लाम ने डिफाइन किए हैं। अगर कंफ्यूजन हो रहा है आसपास के माहौल की वजह से हो रहा है। जब दो अलग इंसान हैं मर्द और औरत, जब दो अलग स्फीयर्स हैं, जब दो अलग सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सो फिर एक बात जहन में रखिए, एक मर्द और एक औरत का मर्द या औरत होना ये सिर्फ उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कनेक्टेड नहीं होता, इट्स अ कंप्लीट पर्सनैलिटी, इट्स अ कंप्लीट माइंडसेट। आप सिर्फ ये नहीं कहते कि एक मर्द इसलिए मर्द है कि उसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग हैं, इट्स अ कंप्लीट माइंडसेट, ऐसा हो नहीं सकता। अब तो हम होमोसेक्सुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जुमले सुनते हैं ना कि आई एम फिजिकली अ मैन बट देयर इज अ वुमन इनसाइड मी, सुनते हैं आप लोग? इट्स अ फैक्ट। हाँ, मेजॉरिटी मेकअप आर्टिस्ट designers, they claim that in their interviews, I'm physically a man, but there is a woman inside me. वो जो आपका जिन था करीन, उसने आपको ये बताया कि मैं औरत हूं, और आपने उसके वसवसों को इतनी हवा दी कि आपको यकीन होने लग गया कि आपके अंदर एक औरत मौजूद है। I'm telling you it's a fact. हर इंसान के साथ उसका एक करीन मौजूद है ना, आप चाहें तो उसको कंट्रोल करके रखें और आप चाहें तो वो आपको कंट्रोल करे। यही तो करीन था जिसके लिए सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मैंने अपने इस जिन को मुसलमान कर लिया। जिन है आपके अंदर? आप क्या है? आई एम पोजेस्ड. शैतान क्या होता है? जिन होता है. हर इंसान के साथ अल्लाह ने उसके इम्तिहान के लिए एक करीन लगाया हुआ है. जहां अल्लाह ने फरिश्तों की प्रोटेक्शन दी है, वहां अल्लाह ताला ने यह शैतान भी रखा है. हुमाजात इसी की तरफ से आते हैं. आप दुआएं मांगती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं कि अल्लाह हम हुमाजात शयातीन से पनाह मांगते हैं. ये हुमाजात यही होता है. और आप जितना इसकी बात मानेंगे उतना ये आपकी बॉडी और आपके माइंड को कंट्रोल करता रहेगा. इसलिए कि जितना आप किसी चीज को खाना खिलाते हैं वो उतना सेहतमंद हो जाती है. आपके घर में बिल्ली है, आप उसको 3 जगह की बजाय 6 दफा खाना खिलाएं, फिर आप उसका साइज देखें, बेचारी चलने के काबिल नहीं रहती. नहीं, हवा नहीं होती, वाकई गोश्त होता है पूरा. हाँ, इंसान का भी यही हाल होता है. आप तीन मरतबा की बजाय 6 मरतबा खाना खाएं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा. सो जिस शैतान को आप अपने गुनाहों का फ्यूल देती रहेंगी, हर मरतबा उसके वसवसों की इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी. अगर कोई इंसान ये कहता है कि मेरे अंदर जो है वो एक औरत मौजूद है और फिजिकली आई एम अ मैन, सो उसको बहुत ज्यादा इस्तग़फार करने की जरूरत है, अपने उस करीन को कमजोर करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा नेकियों में आगे बढ़ने की जरूरत है. सो अल्लाह ताला ने बिल्कुल अलग अलग रोल एलोकेशंस दिए हैं. अब खुद साइंस उस जगह पर पहुंच रही है और पहुंचेगी इंशाल्लाह, जरूर पहुंचेगी. इसलिए कि अल्लाह का कलाम हक है और हक हमेशा सामने आता है. बातिल को अल्लाह खुद मिटाता है इंशाल्लाह. सिर्फ आपको और मुझे तो ये देखना है कि वो जो बातिल मिटने की तरफ जा रहा है उसमें कितनी स्ट्राइक मेरी तरफ से गई थी, कितनी एफर्ट मेरी गई थी, कितनी कोशिश मेरी थी. वरना ये तो अल्लाह का दीन हक है, ये तो गालिब होकर रहेगा. अल्लाह ये देखेगा किसने अपना अपना हिस्सा डाल दिया. इसका ताल्लुक, अब साइंस कह रही है कि एक मर्द और औरत का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ सिर्फ कनेक्शन नहीं होता. एक तरफ साइकोलॉजी और एक तरफ साइंस है. सो अब साइंटिफिक रिसर्च हो रही है. होता यह कि इस तरह की रिसर्च को पॉपुलैरिटी नहीं मिलती जो कि आपके नॉर्म्स को हिला सकते हैं. इट्स अ फैक्ट. दीन को पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिलती है? इसलिए कि दीन आपके माशरे के नॉर्म्स को हिला देता है. इसी तरह से साइंटिफिक रिसर्च वो वाली जो आपके एक स्टेब्लिश नॉर्म्स को, स्टेब्लिश माइंडसेट्स को हिलाएंगी, उनको कभी पॉपुलैरिटी नहीं ली देने जाती. कैंसर की वैक्सीन अब तक क्यों नहीं सामने आ पा रही है? जो डॉक्टर उसमें आगे बढ़ता है उसको मर्डर कर दिया जाता है. आप सबको मालूम है, इट्स अ ग्राउंड फैक्ट. दुनिया जानती है इस बात को. कीमोथेरेपी इट्सेल्फ कितनी ज्यादा लीथल है, दुनिया जान गई है अब इस बात को कि वो कुछ भी नहीं कर रही होती, वो लिटरली आपको अंदर से और बीमार कर रही होती है. रिसर्च में आप अब तक उस तरह का विटामिन B12 क्यों नहीं डेवलप कर सके, जबकि आपको ये बात साइंटिफिकली मालूम है कि कैंसर का बेहतरीन इलाज उससे हो सकता है. जो जो चीज माशरे के स्टेब्लिश नॉर्म्स को हिलाएगी, वो स्टेब्लिश नॉर्म जो अक्सरियत फॉलो करती है, कभी भी अक्सरियत उसको सामने नहीं आने देगी बिकॉज ऑफ द सो मेनी फैक्टर्स. उसमें बहुत सी दुनिया की मोहब्बतों के एंगल इन्वॉल्व होते हैं, तो दुनिया उसको आगे नहीं आने देती. साइंस अब रिसर्च कर रही है और ये इतनी पॉपुलर थ्योरी नहीं है जो मैं आपके सामने रख रही हूं, बट यू कैन फाइंड इट. यूनिवर्सिटीज के अंदर इसके ऊपर काम हो रहा है. वो कहते हैं कि इंसान का मर्द और औरत होना इट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग. मर्द कंप्लीटली अलग है, औरत बिल्कुल अलग है. इवन इसके ऊपर इतना रिसर्च हो रहा है कि वो एक नई रिसर्च है जिसको तकरीबन 10-12 साल से उस पर काम हो रहा है. अक्सरियत के लिए वो अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक. लेबोरेटरीज अब तक उसके ऊपर नहीं आई हैं. विद इन साइंटिफिक कम्युनिटी इसके ऊपर बातें होती हैं और उसमें वो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने रखूं. आपकी इन्फॉर्मेशन में आना इसलिए जरूरी है कि ये टॉपिक कनेक्टेड है होमोसेक्सुअलिटी और जेंडर इक्वालिटी के साथ. वो कहते हैं कि अब रिसर्च में मर्द और औरत का माइंडसेट अलग समझने की वजह से इंसानियत वहां जा सकती है कि आप एक वक्त आए कि मर्दों के लिए जो एंटीबायोटिक्स हों वो अलग हों और औरतों के लिए अलग हों. दिस इज अ साइंटिफिक रिसर्च जिसके ऊपर काम हो रहा है. जेनेटिक टूल किट को अलग कर दिया जाए मर्दों की और औरतों की. ये साइंस किस तरफ जा रही है? क्या उसी तरफ नहीं जा रही जो कुरान बता रहा है? दो अलग जेंडर, दो अलग स्फीयर्स, दो अलग माइंड सेट और दो अलग रोल एलोकेशन सेट, इसी तरफ जाएगी साइंस इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि मुसलमानों का भी इसके अंदर कुछ हाथ आ जाए। अगर ये तीन बातें जो मैं आपके सामने रख रही हूं, जो एक साइंस कहती थी और अब उसको खुद साइंटिफिक रिसर्च निगेट कर रही है, लूत अलैहिस्सलाम के किस्से से इसको बड़े आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। साइंस अब खुद इस, मैं उस अनएक्सप्लोर्ड थ्योरी की बात कर रही हूं जो मेजॉरिटी अभी नहीं जानती है, उसमें तीन पॉइंट वो कहते हैं, मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल, दिस द साइंटिफिक बेस्ड थ्योरी, साइंटिस्ट कम्युनिटी इसके ऊपर रिसर्च कर रही है एंड दे हैव कम टू द कंक्लूजन, जिसके बाद उन्होंने ये तीन पॉइंट्स सामने रखे हैं। वो कह रहे हैं मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल, ह्यूमन जीनोम आर नॉट इक्वल इन मैन एंड वुमेन। ह्यूमन जीनोम क्या होता है मैं आपको अभी बताती हूं, जीनोम GENOME। एक वक्त था साइंस कहती थी ह्यूमन जीनोम मर्द और औरत में इक्वल होते हैं, ये रिसर्च बताती है कि ह्यूमन जीनोम मर्द और औरत में इक्वल नहीं है। तीसरी चीज, अब तक जितनी भी मेडिसिन फील्ड थी, मेडिकेशन फील्ड जिसमें स्टडी ऑफ डिजीजेस के थ्रू मेडिसिन बनती थी, इस रिसर्च के मुताबिक एक्चुअली वो फ्लॉड है, कमी वाली है, फ्लॉड कमी है उसमें, FLAWED, उसमें कमी है, वो कंसाइज नहीं है बीमारियों के इलाज के हिसाब से। ये तीन पॉइंट्स इस साइंटिफिक स्टडी के मेन पॉइंट्स हैं, मैं बताती हूं, मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल, ह्यूमन जीनोम ऑफ मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल, और स्टडी ऑफ डिजीज इज फ्लॉड, इज प्रॉब्लमैटिक, इट्स नॉट कंप्लीट, इट्स नॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर द डिजीजेस। अब मैं आपको समझाती हूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, अल्लाह करे कि मैं आसान जुबान में समझा सकूं। जहां तक ह्यूमन जीनोम की बात है, ह्यूमन जीनोम क्या होता है, देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा साइंस की किताब में सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ा है ना, अमीबा, यूग्लीना, पैरामीजियम, ये वो आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल होते हैं, एक सेल से ही पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है और उसकी एक लाइफ स्पैन होती है, पानी में बिल्ट होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। सो ह्यूमन जीनोम होता है ये जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या इंसान मल्टी सेल्यूलर है? इंसान में ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स होते हैं, सो इंसान मल्टी सेल्यूलर है। आपके जिस्म में कितने लाखों करोड़ों सेल हों, हर क्या उसकी इब्तदा एक सेल से हुई थी? आपके जिस्म में इस वक्त लाखों करोड़ों सेल हो सकते हैं, उसकी बिगनिंग हुई थी फ्रॉम अ सिंगल सेल, और जो आपके एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर होता है वही आपके हर सेल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दिस इज द मेन, बिल्कुल बेसिक साइंस। क्या आपके एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं? ये तो सब क्रोमोसोम का लफ्ज सबने हमने अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से पढ़ा हुआ है। ये जो हर सेल के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है और जो उन क्रोमोसोम्स की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसको जीनोम कहते हैं। क्लियर हो गया? ह्यूमन जीनोम किसको कहते हैं? सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स की जो करेक्टरिस्टिक्स और नंबर होते हैं, उसको ह्यूमन जीनोम कहा जाता है। अब मर्द और औरत के जीनोम एक वक्त तक कहा जाता था बिल्कुल एक जैसा है, अब इस स्टडी के मुताबिक वो कह रहे हैं कि मर्द और औरतों के जीनोम स्लाइटली डिफरेंट हैं, यानी क्रोमोसोम्स पर मौजूद इंफॉर्मेशन, आपके क्रोमोसोम्स असल में होते क्या हैं? आप जब एक एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, एक बच्चा डिवेलप होता है, सो जो आपके बच्चे में पहला सेल बनता है, सिंगल सेल, जाइगोट जिसको बोलते हैं, उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सारी डीएनए इंफॉर्मेशन उन क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है, उन्हीं क्रोमोसोम से हाथ बनेंगे, उन्हीं क्रोमोसोम से पांव बनेंगे, उन्हीं से लिवर, हार्ट, ब्रेन, सब कुछ बनेगा, ठीक है. सो ये क्रोमोसोम्स बेसिकली आपके बिल्डिंग ब्लॉक में बेसिक यूनिट होते हैं. अब एक वक्त था साइंस कहती थी कि मर्द और औरतों के जीनोम बिल्कुल एक जैसे हैं. अब इस रिसर्च के मुताबिक वो कह रहे हैं नहीं, मेन एंड वेमेन जीनोम आर डिफरेंट. वो कहते हैं जब फिजिकल अपियरेंस एक जैसी नहीं है मर्द और औरत की, तो फिर इनके जीनोम भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं हो सकते. देयर विल बी अ स्लाइट चेंज.